आज है 31 दिसंबर दिन शनिवार। स्वागत है आपका दिन भर में। मैं हूं सुशीला सिंह। सीटों के बंटवारे को लेकर उठा विवाद। अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव के निष्कासन के बाद प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, हम साथ साथ हैं।
अभी खुशखबरी दे रहे हैं सभी, अभी अखिलेश यादव का निष्कासन नेताजी ने रद्द कर दिया है, प्रोफेसर रामगोपाल का भी खत्म कर दिया है निष्कासन।
लालू प्रसाद और आजम खान ने भी की सुलह की कोशिशें, तो बीजेपी ने कहा,
बहुत ही सुनियोजित तरीके से अभियान चलाया कि अब सत्ता तो हमारे हाथ से चली ही गई है, अखिलेश यादव की इमेज बिल्डिंग कैसे किया जाए। तो मैं यह मानता हूं कि सारा जो घटनाक्रम दिखाई दे रहा है वो एक शुद्ध रूप से नाटक था।
और झारखंड में खान हादसे के 48 घंटे बाद भी पूरा नहीं हुआ है राहत बचाव कार्य। ये सब थोड़ी देर में, पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार वात्सल्य राय से। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर निकालने का फैसला वापस ले लिया है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव के मुताबिक निष्कासन रद्द करने का फैसला पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव के आदेश पर किया गया है। उन्होंने बताया कि पुरानी सभी बातें खत्म हो गई हैं। मुलायम सिंह यादव ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश और रामगोपाल को पार्टी से निकालने का ऐलान किया था। इराक की राजधानी बगदाद के एक व्यस्त बाजार में हुए 2 बम धमाकों की चपेट में आकर कम से कम 28 लोगों की मौत हो गई है। धमाके के असर से कम 50 अन्य लोग घायल हुए हैं। पुलिस के मुताबिक एक धमाका कार के पुर्जे बेचने वाली दुकान के करीब हुआ। कुछ देर बाद एक आत्मघाती हमलावर ने भीड़ भरे इलाके में धमाका किया। दोनों धमाकों की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट ने ली है। हाल के दिनों में बगदाद में इस्लामिक स्टेट के हमले बढ़े हैं। जर्मनी के चांसलर एंगेला मर्केल ने कहा है कि इस्लामी चरमपंथ से मुकाबला उनके देश के लिए सबसे बड़ी परीक्षा है। मर्केल ने नए साल के संदेश में कहा कि वो देश की सुरक्षा व्यवस्था बेहतर करने के लिए हर संभव कोशिश करेंगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जर्मनी अपने लोकतांत्रिक मूल्यों से समझौता नहीं करेगा। मर्केल ने कहा,
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 2016 war ein Jahr schwerer.
मेरे साथी देशवासियों, 2016 परीक्षाओं का साल था। आज की शाम मैं आपसे इसी बात में बारे में बात करना चाहूंगी। मैं बताऊंगी कि तमाम बातों के बाद भी मैं जर्मनी को लेकर आश्वस्त क्यों हूं? मैं देश और इसके लोगों की ताकत पर भरोसा क्यों करती हूं? इस्लामी चरमपंथ बिना शक के सबसे बड़ी समस्या है। जिन लोगों की हमारे देश ने मदद की, उन्होंने अपने कार्यों के जरिए इस भावना का क्रूरता के साथ मजाक बनाया, लेकिन हम नफरत की दुनिया को एकजुटता की भावना से परास्त करेंगे। ये थे एंगेला मर्केल के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में भीड़ के बीच दाखिल हुई एक कार की चपेट में आकर कई लोग घायल हो गए हैं। पुलिस का कहना है कि फिलहाल ऐसा नहीं लगता कि यह जानबूझकर किया गया हो। घायलों में से 3 की हालत गंभीर बताई गई है। कार के चालक को हिरासत में ले लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। जर्मनी के बर्लिन और फ्रांस के नीस में हुए हमलों की वजह से पश्चिमी देशों के ज्यादातर शहरों में नववर्ष की पूर्व संध्या पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लंदन, बर्लिन, ब्रसल्स और सिडनी में चरमपंथी हमलों के खतरों को लेकर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। लॉरी और ट्रकों से होने वाले संभावित हमलों को रोकने के लिए पेरिस, मैड्रिड और न्यूयॉर्क में कंक्रीट के बैरियर लगाए गए हैं। न्यूयॉर्क पुलिस के डिप्टी चीफ स्कॉट शानली ने बताया, दुनिया में जो हुआ हमें उसके आधार पर तैयारी करनी होगी। आप जानते हैं कि नीस में जो हुआ, बर्लिन में जो हुआ, इसलिए अब हम वाहनों के खतरों को लेकर सतर्क हैं। किसी वाहन को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। फुटपाथों को सीमेंट के अवरोधों के जरिए बंद किया जाएगा। हम अपने ट्रकों के जरिए रास्तों को बंद कर देंगे। ये थे स्कॉट शानली के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ताइवान के राष्ट्रपति साई यिंग वेन ने साल के आखिरी संबोधन में कहा है कि चीन उनके देश के खिलाफ धमकी देने की पुरानी नीति पर लौट रहा है। उन्होंने कहा कि ताइवान इस दबाव के आगे झुकेगा नहीं। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और मानता है कि ज़रूरत होने पर इस पर अधिकार किया जा सकता है। राष्ट्रपति साई को ताइवान की स्वतंत्रता के हिमायती के तौर पर देखा जाता है। बीबीसी समाचार।
آپ سن رہے ہیں دن بھر لائیو ریڈیو بی بی سی ہندی ڈاٹ کام اور اپنے موبائل پر سشیلا سنگھ کے ساتھ۔ شروتاؤں، ہم آپ کو ورشانت کارکرموں کی شرنکھلا سنوا رہے تھے، لیکن اتر پردیش میں پل پل بدلتے راجنیتک گھٹنا کرم کی وجہ سے ہم نے اس کڑی کو آج روک دیا ہے، جس کے لیے ہم آپ سے معافی چاہیں گے۔ اور ابھی ابھی پردھان منتری نریندر مودی نئے سال کی پورو سندھیا پر راشٹر کو سمبودھت کر رہے ہیں۔ سبھی لوگوں کو ان کے سمبودھن کا انتظار تھا، کیونکہ 8 نومبر کو 500 اور 1000 کے روپے پر نوٹ بندی کی گھوشنا کے بعد انہوں نے لوگوں سے 50 دن کا سمے مانگا تھا، اور وہ سمے سماپت ہو چکا ہے، اور ہم انتظار تھا کہ وہ نیا کیا اعلان کرتے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں ان کے سمبودھن کو کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔
سچائی اور اچھائی کتنی اہمیت رکھتی ہے، کال کے کپال پر یہ انکت ہو چکا ہے کہ جن شکتی کا سامرتھ کیا ہوتا ہے، اتم انوشاسن کسے کہتے ہیں۔ اپ پرچار کی آندھی میں ستیہ کو پہچاننے کی وویک بدھی کسے کہتے ہیں۔ سامرتھوان بے باک بے ایمان کے سامنے ایمانداری کا سنکلپ کیسے وجے پاتا ہے۔ غریبی سے باہر نکلنے کو آتور زندگی، بھویہ بھارت کے نرمان کے لیے کیا کچھ نہیں کر سکتی۔ دیش واسیوں نے جو کشٹ جھیلا ہے، وہ بھارت کے اجول بھوشیہ کے لیے ناگرکوں کے تیاگ کی مثال ہے۔ 125 کروڑ دیش واسیوں نے سنکلپ بدھ ہو کر اپنے پرشارتھ سے، اپنے پریشرم سے، اپنے پسینے سے اجول بھوشیہ کی آدھار شلا رکھی ہے۔
تو پردھان منتری دیش کو سمبودھت کر رہے ہیں، اس پر ہم آگے بھی چرچا کریں گے اور جانیں گے کہ کیا خاص کہا ہے انہوں نے اپنے سمبودھن میں۔ اب بات کرتے ہیں فی الحال اتر پردیش کی۔ سماجوادی پارٹی میں ٹکٹوں کے بٹوارے کو لے کر اٹھے وواد کے بعد پارٹی کے 2 خیموں میں بٹنے کی اٹکلیں تیز ہوئیں، اور کل شام پارٹی کے سپریمو ملائم سنگھ نے مکھیہ منتری اکھلیش یادو اور مہا سچیو رام گوپال یادو کو پارٹی سے نشکاشت کر دیا۔ پچھلے 3 دن سے چلے اس ڈرامہ کا انت آج ہو گیا، جب پارٹی کے اتر پردیش ادھیکش شیوپال یادو نے گھوشنا کی کہ سب لوگ ساتھ ساتھ ہیں اور نشکاشن واپس لے لیا گیا ہے۔ لیکن کل یعنی رویوار کو بلایا گیا آپاتکالین راشٹریہ پرتنیدھی سمیلن ابھی بھی نرست نہیں کیا گیا اور اس کی تیاریاں چل رہی ہیں۔ ایسے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ سمجھوتا محض شنک ہے، اور کل کے سمیلن میں پارٹی میں کچھ بڑا فیر بدل بھی ہو سکتا ہے۔ آج کے پورے گھٹنا کرم پر سنیے لکھنؤ سے سمیر آتمج مشر کی یہ رپورٹ۔
لکھنؤ میں شنیوار کی دھند بھری بےحد ٹھنڈی صبح کالیداس مارگ کے آس پاس پہنچ کر نہ صرف راجنیتک گرمی کا احساس کرا رہی تھی، بلکہ وہاں امڑا ہجوم اس ٹھنڈ کو دھتا بتا رہا تھا۔ اکھلیش یادو نے صبح 9 بجے ہی ودھائکوں کی بیٹھک بلائی تھی، اور 10 بجتے بجتے پارٹی کے قریب سبھی ودھائک ان کے آواز پر موجود تھے۔ ودھائکوں کے ساتھ بیٹھک کرنے کے بعد اکھلیش وجئی بھاؤ سے سیدھے اپنے پتا اور پارٹی کے راشٹریہ ادھیکش ملائم سنگھ کے پاس پہنچے۔ وہاں شیوپال یادو بھی تھے۔ کچھ ہی دیر بعد اس کا نشکرش بھی سامنے آ گیا۔
ابھی اکھلیش یادو کا نشکاسن نیتا جی نے رد کر دیا ہے۔
بہت بہت دھنیواد
پروفیسر رام پال کا بھی ختم کر دیا ہے نشکاسن، اور اب ہم سب لوگ مل کر کے
ملائم اور شیوپال نے بھی ان امیدواروں کی بیٹھک بلائی تھی جنہیں ان کی پارٹی نے ٹکٹ دیے تھے، لیکن یہ بیٹھک رد کر دی گئی۔ بتایا جا رہا ہے کہ پارٹی میں اکھلیش کی طاقت کا احساس پارٹی کے ورشٹھ نیتاؤں کو ہو گیا، یا پھر انہیں کرا دیا گیا۔ حالانکہ پارٹی میں کئی اور فیصلوں کی بھی چرچائیں ہوا میں گھومتی رہیں، لیکن آدھیکارک طور پر صرف اتنا ہی ہوا۔ پارٹی کے ورشٹھ نیتا اعظم خان بولے،
سے زیادہ کہیں اگر احساس تکلیف ہے تو وہ مسلمانوں میں ہے، کیونکہ ان کا بڑا گھاٹا ہونے والا ہے اگر سرکار نہیں بنتی ہے۔ انہیں انتظار تھا اس بات کا، ہمارے اوپر بھی دباؤ تھا، ہم سے امید کرتے تھے کہ ہم شاید اس کو سلجھا سکیں۔ آج اس کوشش میں ہم کامیاب ہو سکے ہیں، ये कामयाबी कहां तक आगे चलेगी इसके बारे में मैं भी कुछ नहीं कह सकता।
परिवार और पार्टी में आए संकट के लिए कथित तौर पर जिम्मेदार माने जा रहे राष्ट्रीय महासचिव अमर सिंह लखनऊ में तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को अपनी शुभकामना भेजी। उन्होंने अपने ऊपर लग रहे आरोपों को भी नकारा।
मैं उनको हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूँ कि टूट का मैं कारण नहीं, मैं जोड़ने का कारण बनना चाहता हूँ, और अगर किसी को मुझसे कष्ट है तो मैं समाजवादी पार्टी परिवार और सभी कार्यकर्ताओं के अंदर एकजुटता दिखाना चाहता हूँ।
शिवपाल सिंह यादव ने भले ही गर्मजोशी के साथ पार्टी में आए संकट के समाधान की घोषणा की, लेकिन जानकार बता रहे हैं कि संकट अभी टला नहीं है। राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव के बयान पार्टी के अधिकृत ईमेल से लगातार आ रहे हैं, तब भी आए जब उन्हें निकाल दिया गया था। इन्हीं ईमेल्स में एक ये भी था कि पार्टी के राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल की बैठक 1 जनवरी को लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क में बुलाई गई है। इस बैठक को पार्टी में संकट के समय अहम माना जा रहा था। संकट टलने की आधिकारिक घोषणा के बावजूद बैठक को निरस्त करने की कोई अधिकृत सूचना नहीं आई है। यही नहीं, बैठक की तैयारियां भी जोर शोर से चल रही हैं। अब देखना यह है कि यह बैठक सिर्फ औपचारिक रह जाती है या फिर इसमें कोई बड़ा फैसला होता है। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
इससे पहले राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा था कि वे यूपी में समाजवादी पार्टी में चल रही उथल पुथल से चिंतित हैं। लालू प्रसाद ने जानकारी दी कि उन्होंने सुबह 8 बजे पहले सपा के नेता मुलायम सिंह से और फिर अखिलेश यादव से बात की। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि मैंने मुलायम सिंह से कहा कि आपने पार्टी बनाई, अखिलेश को बनाया, अब इसे संभालने की जिम्मेदारी भी आपकी है, और अखिलेश को संयम बरतने और मुलायम सिंह से बात करने का सुझाव दिया। इसके बाद अखिलेश और गोपाल की पार्टी में वापसी पर उन्होंने कहा कि सही राय देना उनका फर्ज था।
फर्ज है, हमारे रिश्तेदार हैं, पार्टी है, बड़ा प्रदेश है, भारत का भविष्य टिका हुआ उत्तर प्रदेश पर, हमारा फर्ज है ना कि क्राइसिस में सही राय देना, सही बात करना। हमने राय दिया, अपनी बात को रखा, देख रहे हैं कि सब पॉजिटिव बात चल रही है, पूरा मिलजुल के लड़ेंगे लोग, अब नहीं लड़ेंगे लोग,
अब नहीं लड़ेंगे लोग, ये कहना है RGD के नेता लालू प्रसाद का। लेकिन 3 दिन तक चले हाई वोल्टेज ड्रामा जो चला, और रामगोपाल यादव को जिस राष्ट्रीय प्रतिनिधि सम्मेलन को लेकर अनुशासनहीनता की कार्रवाई की गई थी वो कल हो रहा है, तो आखिर पार्टी के अंदर चल क्या रहा है? हमारे साथ लखनऊ से BBC संवाददाता समीर आत्मज मिश्र और नितिन श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। पहले समीर आपके पास आना चाहेंगे। आज सुबह समीर से हमारा संपर्क टूट गया है। BJP का इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कहना है आपको सुनवाएंगे, लेकिन अभी बात करते हैं BJP के नेता केशव प्रसाद मौर्य की। उनका कहना था कि अखिलेश यादव की छवि सुधारने की ये पूरी कोशिश है।
देखिए, समाजवादी पार्टी का जो कुनबा है, या मैं कहूँ जो सैफई परिवार है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति बढ़ते समर्थन से वो लगातार घबरा गए, और सारा चित्र जब उनके सामने आ गया तो उन लोगों ने एक बहुत ही सुनियोजित तरीके से अभियान चलाया कि अब सत्ता तो हमारे हाथ से चली ही गई है, अखिलेश यादव की इमेज बिल्डिंग कैसे किया जाए। तो मैं यह मानता हूं कि सारा जो घटनाक्रम दिखाई दे रहा है वो एक शुद्ध रूप से नाटक था, और अखिलेश यादव जी की इमेज बिल्डिंग करने की कोशिश थी, और इस प्रकार की कोई भी कोशिश से जनता कहीं भ्रमित होने वाली नहीं है। वो सपा की साइकिल को पंचर नहीं, खंड खंड करेगी, कमल खिलेगा, और एक स्थिर सरकार, विकास करने वाली सरकार, सुशासन देने वाली सरकार, गुंडा राज को ख़त्म कर देने वाली सरकार, और उत्तर प्रदेश में रोजगार को पैदा करने वाली सरकार, गरीबों की भलाई की जो योजनाएं चाहे सेंट्रल से हों चाहे स्टेट से हों, ईमानदारी से गरीब तक पहुँचाने वाली सरकार, या भारतीय जनता पार्टी दे सकती है।
तमाम लोग ये भी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जो है वो वाकई में यूथ के लीडर बन के निकल रहे हैं, और इस पूरे प्रकरण से वो बहुत मजबूत हो जाएंगे, और चूंकि BJP अभी भी किसी नाम को लेकर अभी BJP में कोई क्लैरिटी नहीं है, तो इसलिए ये फायदा, ये राउंड अखिलेश यादव के पास रहेगा चाहे विपक्षी दल ही क्यों ना हो।
देखिए, श्री अखिलेश यादव जी का कार्यकाल असफलताओं से भरा है, विफलताओं से भरा है, विकास उन्होंने किया नहीं है, जो वादा किया उसे पूरा नहीं किया है, कानून व्यवस्था वो सुधार सके नहीं है, नौजवानों को रोजगार का कोई अवसर दे सके नहीं है। उनके पास स्वयं की समाजवादी पार्टी से कराई गई सर्वे रिपोर्ट उपलब्ध है कि वो 50 के ऊपर उनकी संख्या नहीं बढ़ रही विधायकों की, 2017 में उनकी यही स्थिति होने वाली है। वो तो अपनी पराजय को जानते हैं, इस सच से वो अवगत हैं, और इस सच्चाई को जानने के बाद इस प्रकार की एक कोशिश किए कि जिससे अखिलेश यादव जी की इमेज बिल्डिंग हो जाए।
بی جے پی کے نیتا کیشو پرساد موریا کا کہنا ہے کہ اکھلیش یادو کی چھوی سدھارنے کی ان کی چھوی بلڈ اپ کرنے کی کوشش ہے یہ سبھی جو گھٹنا کرم ہوا ہے۔ ہمارے ساتھ سمیر آتما مشر جو ہے لکھنؤ سے جڑ چکے ہیں۔ سمیر، آج جو پورا گھٹنا کرم چلا ہے، صبح صبح کئی بیٹھکوں کا دور جاری رہا، لیکن اس کے باوجود یہ دیکھا جا رہا ہے کہ سمیلن ہو رہا ہے، یہ جاننا چاہیں گے کہ آخر پارٹی کے بھیتر چل کیا رہا ہے؟
جی سشیلا، وہی بات ہے کہ ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ صلح ہو گئی ہے، اور رام گوپال یادو نے یہ سمیلن بلایا، سمیلن کی بات ابھی بھی جاری ہے کہ ابھی سمیلن ہوگا۔ اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک ای میل آیا، وہ ای میل جو کہ آدھیکارک پارٹی کا ای میل وہیں سے آتا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ سمیلن صبح 10 بجے جنیشور مشر پارک میں ہو رہا ہے، آپ سبھی سے انوروھ ہے کہ وہاں اس کو کور کرنے کے لیے آئیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چیزوں کو سلجھانے کا دعویٰ تو کیا جا رہا ہے لیکن چیزیں سلجھی نہیں ہیں۔ یہی نہیں، اس سمیلن میں سماج وادی پارٹی میں خاص طور پہ جو اکھلیش یادو کا گروپ ہے، گٹ ہے، اس کی اور سے وہاں کوئی بڑا فیصلہ لینے کی امید جتائی جا رہی ہے، چونکہ رام گوپال یادو اس کارکرم کو لے کر کے بہت ہی سجگ ہیں، اور یہ کارکرم جو راشٹریہ پرتنیدھیوں کا سمیلن بلایا گیا، آپات سمیلن اس کو کہہ کر کے بلایا گیا ہے، اور اس سمیلن میں پورے پردیش سے یا کہہ لیجیے کہ دیش بھر سے لوگ اس میں بلائے گئے ہیں۔ پہلے اس کو ایک وشو ودیالے کے ایک پرانگڑ میں رکھا گیا تھا، وہاں کے آڈیٹوریم میں، لیکن ایک دن بعد اس کا استھان بدل کر کے جنیشور مشر پارک میں رکھ دیا گیا، جو کہ کافی بڑا پارک ہے یہاں لکھنؤ کا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سے اسپشٹ ہے کہ کسی طرح سے یہ نہیں کہا جا سکتا ابھی کہ سنکٹ ابھی سماجوادی پارٹی کا ٹلا ہوا ہے۔
جی، سنکٹ ابھی سماجوادی پارٹی کا ٹلا ہوا ہے، یہ ٹل گیا ہے، یہ ابھی کہنا بہت مشکل ہے۔ نتن شریواستو جو ہیں وہ لکھنؤ میں سماجوادی پارٹی کے مکھیالیہ کے باہر ہیں۔ نتن، یہ بتائیے کہ آپ کی بھی کئی کارکرتاؤں سے بات چیت ہوئی ہوگی، کیا بھانپ پا رہے ہیں آپ وہاں پر؟
ایک دم لگتا ہے کہ میری تمام لوگوں سے بات ہو رہی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ واقعی میں جو سنکٹ ہے وہ فی الحال ٹلا سا لگ رہا ہے۔ میں آپ کو مثال کے طور پہ بتاؤں، میں اس وقت 19 وکرمادتیہ مارگ پر ہوں، پارٹی مکھیالیہ کے ٹھیک سامنے، اور جب ہم صبح یہاں پر 12:30 بجے پہنچے تھے تو قریب 1.25 کلومیٹر کے ایریا میں 250 بیریکیڈ تھے، اور 250 بیریکیڈ کے ساتھ ساتھ 1500 پولیس والے تھے۔ تو سرکار کو، پارٹی کو تمام طرح کی آشنکائیں تھیں، ان کو اس بات کی شیورٹی نہیں تھی کہ کیا ہوگا آگے، لیکن اب لگتا ہے کہ پارٹی کو اور پارٹی کے جو کارکرتا ہیں ان کو اس بات کا شاید دلاسہ مل گیا ہے، یا اس کو ان کو اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ پارٹی نے پھر سے ایک بار جو ہے بہت بڑے سنکٹ پر فی الحال کے لیے قابو سا پا لیا ہے۔
جی، فی الحال کے لیے قابو سا پا لیا ہے۔ نتن شریواستو کے ساتھ ہی ورش پترکار یوگیش مشرا بھی ہیں۔ نتن، اگر ہماری ان سے بات ہو سکے۔ جی اگر یوگیش جی، آپ کا کارکرم میں سواگت ہے۔ شیوپال یادو آج کافی مسکراتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ ان کا نشکاشن جو ہے اکھلیش یادو اور رام گوپال کا واپس لے لیا گیا ہے، جیسے کہ آپ نے ہمارے دو سنواداتاؤں کی بات چیت بھی سنی، کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ پارٹی کے اندر جو سنکٹ تھا وہ پوری طرح سے ختم ہو گیا ہے؟
سشیلا، یہ کہنا ابھی بہت مشکل ہوگا، پر دو باتیں اس میں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پہلا یہ کہ اگر یہ سنکٹ ختم ہوا تو کس قیمت پہ ختم ہوا ہے، لڑائی کس بات کی تھی؟ لڑائی اکھلیش یادو جی کے ایمرجنس کو لے کے تھی، ان کی ایمرجنس ہو گئی، پر جس سنگٹھن کو، جس بیٹھک کو ملائم سنگھ یادو جی نے یہ کہا تھا کہ یہ ان لیگل ہے، اور جس کے ناطے انہوں نے دونوں لوگوں کا نشکاسن کیا، تو وہ بیٹھک کل ہے، اور انہی سارے لوگوں کے ساتھ ہے جن لوگوں کو پہلے موبلائز کر کے اکھلیش یادو اور رام گوپال یادو جی لے کے آئے تھے۔ تو کل کی بیٹھک کوئی مہتوپورن فیصلے کی اور سنکیت دیتی ہے یا یہ بتاتی ہے کہ یہ کس کی قیمت پر یہ سمجھوتا ہوا ہے؟ تو کل کی بیٹھک میں دو سندیش نکلیں گے، سمجھوتا ہوا تو قیمت پہ کس کے، یا جو کچھ ہوا وہ سچ مچ شانت ہے یا نہیں ہے، سب کچھ سیٹل ہوا یا نہیں ہے، تو کب تک انتظار کرنا ہوگا۔ فی الحال جو دکھ رہا ہے وہ ایک شانتی دکھ رہی ہے، ایک لگتا ہے کہ چنگاری تھوڑی شانت ہے، پر کل
جی یوگیش مشرا جی آپ کے پاس واپس لوٹیں گے۔ تو جو استھتی ہے، تین دن تک جو ناٹکیے گھٹنا کرم چلا تھا وہ تھوڑا سامان ہوتا نظر آ رہا ہے، لیکن لوگوں کا کیا کہنا، یہی جاننے کے لیے سمیر آتما مشر نے کچھ لوگوں سے بات کی۔
کچھ لوگ سماجوادی پارٹی کے کارکرتا جو کہ سماجوادی پارٹی کاریالے کے باہر یہ کھڑے ہیں، اور پچھلے دو دن سے آپ لوگ کھڑے ہیں؟
ہاں، دو دن
جب سے یہ سارا پرکرن چل رہا ہے،
پہلے سے ہیں۔
تو یہ بتائیے، جو کچھ ہو رہا ہے جس کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ڈرامے بازی ہو رہی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے، آپ بھی اس کو ڈرامے بازی؟
نہیں نہیں، ایسا کچھ نہیں، وہ تو گھر کی بات ہے، وہ گھر میں تھوڑا بہت تو ہوتا ہی رہتا ہے، اب اس کو لوگ ڈراما تو نہیں کہہ سکتے،
روز ہوتا رہتا ہے،
روز تو ہوا نہیں،
اکتوبر میں بھی ہوا پورا۔
تو یہ تو پردیش کی کنٹرولنگ ہے، پردیش کی سرکار چلا رہے ہیں، सरकार चलाने में थोड़ा बहुत सोच विचार ऊंच नीच हो सकता है।
आपको क्या लगता है क्यों हो रहा है?
अरे नेताजी के सभी लोग आदेश पे चले हैं, जो नेताजी निर्णय लेंगे वही आज सभी का मान्य होगा।
कौन चल रहा है आदेश पे? अखिलेश को बर्खास्त कर दिए तो वो तो कहेगी ठीक है
सभी मामला शांत तो हो गया, नेताजी करेंगे वही होगा।
नहीं तो नेताजी तो डर के मारे कर दिए कि लड़का तो हाथ से निकल गया।
नहीं ऐसी कोई बात नहीं, सब समाज पार्टी एक है, सब कार्यकर्ता एक है।
शिवपाल की नहीं चलती?
नहीं वहाँ नेताजी को मेन मानते, नेता और कोई है वो बाद में, पहले नेताजी जो कुछ है सब मैनपुरी की देन नेताजी है।
देखो अभी जो हुआ है उसको सबको थोड़ा कष्ट है, अभी जो भी जो दिखावा करते घूम रहे हैं वो कोई वो नहीं है, वो सब अपना हेलाइट करना चाहते हैं। और जो सच्चे समाजवादी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो सब अपनी तरह से स्तर पर काम कर रहे हैं। जो थोड़ा बहुत हो गया है और नेताजी ने सब ठीक कर दिया है, निष्कासन था वो भी रद्द हो गया, वो भी वापस आ गए हैं।
कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें शिवपाल को बलि का बकरा बना दिया जाएगा।
ना ऐसा कुछ नहीं, वो तो घर की बात है।
समाजवादी पार्टी की कल्पना बिना शिवपाल जी के नहीं हो सकती। माननीय श्री शिवपाल जी ने कंधे से कंधा मिला करके समाजवादी पार्टी के सहयोग में, समाजवादी पार्टी के गठन में नेताजी का हाथ दिया है। वो हमेशा से उनके साथ कंधा से कंधा मिला के खड़े रहे हैं, संघर्षों में रहे हैं वो, तो उनके बिना समाजवादी पार्टी की परिकल्पना करना ही बेमानी होगी।
अच्छा तो ये बताइए इसका जो आम कार्यकर्ताओं पे क्या असर इसका?
देखो कार्यकर्ता निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के साथ हैं, थोड़े कन्फ्यूज हो गए थे वो, अभी आज की जो मीटिंग हुई उसमें सब क्लियर हो गया, अभी सब हम एक साथ हैं और चुनाव में जाएंगे और जीत के आएंगे।
इनका ये कहना है कि पार्टी में जो कुछ दिक्कतें थी वो सारी दूर हो गई हैं और अब सब लोग एक होकर के चुनाव में जाने की तैयारी कर रहे हैं।
तो एक साथ चुनाव में जाने की तैयारी कर रहे हैं लोग। एक बार फिर चलते हैं नितिन श्रीवास्तव के पास, जिनके पास वरिष्ठ पत्रकार योगेश मिश्रा मौजूद हैं। योगेश जी, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी कि अगर इस पूरे राजनीतिक प्रकरण की बात की जाए तो क्या कहेंगे कि मुलायम सिंह झुकते हुए नजर आए?
बिल्कुल सुशीला जी सही कह रही हैं, जिस तरह अखिलेश यादव ने आज अपनी ताकत का एहसास कराया और जिस तरह मंत्री और विधायक गए, और दूसरी तरफ शिवपाल सिंह यादव जो मुलायम सिंह यादव के इशारे पे काम कर रहे थे, उनके पास कम से कम 22 लोग 23 लोग आए, उससे ये लगता है कि शिवपाल सिंह यादव कमजोर पड़े। और शिवपाल सिंह यादव प्रतिनिधित्व कर रहे थे मुलायम सिंह यादव का, तो मुलायम सिंह यादव निश्चित तौर से चुकते हुए नजर आए। अखिलेश ने अपनी सर्वोच्च सत्ता अपनी ताकत का एहसास कराया।
योगी जी ये बताएं कि इसी से जुड़ा एक सवाल ये भी है, बहुत अहम सवाल है कि जो पार्टी का समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है, आम कार्यकर्ता, जिससे अभी समीर जी बात कर रहे थे और हमारी भी बात हो रही है, मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत भौचक्का सा है। वो इस बात से सकपकाया हुआ है कि समाजवादी पार्टी में आखिर ये क्या शुरू हो गया है। क्या वो कार्यकर्ता, अगर कल सम्मेलन जो है वो सब कुछ ठीक हो जाता है और जैसा शिवपाल ने खुद अनाउंस किया है सब कुछ स्क्रिप्ट के हिसाब से चलता है, तो वो जो समाजवादी पार्टी का आम कार्यकर्ता है वो कितने असमंजस में अगले चुनाव में जाएगा?
लेकिन देखिए समाजवादी पार्टी में पैचअप नेताओं में हो रहा है, ये कार्यकर्ताओं में पैचअप नहीं। दो तरह के कार्यकर्ता इस पार्टी में हैं, एक वो जो पार्टी की विचारधारा से या पार्टी के मतलब सरकार होने से उस पार्टी से किसी लाभ पाने के नाते उपकृत हुए हैं, दूसरे वो लोग हैं जो इन नेताओं के अपने लोग हैं, जो कुछ मुलायम सिंह जी के लोग हैं, कुछ शिवपाल यादव के लोग हैं, कुछ रामगोपाल के लोग हैं, कुछ लोग हैं अखिलेश यादव जी के। तो ये जो लोग हैं पार्टी में कार्यकर्ता, नेताओं के कार्यकर्ता लोग हैं, उनमें पैचअप नहीं होगा, उसका नुकसान पार्टी को इलेक्शन में उठाना ही होगा, क्योंकि जिसके ज्यादा आदमी जीतेंगे उसकी सत्ता फिर बढ़ेगी, ये संघर्ष जारी रहेगा, तो उसको खत्म करने के लिए नीचे के लेवल पर कार्यकर्ताओं का दिल नहीं मिलेगा जो पार्टी के नेताओं के कार्यकर्ता हैं।
बहुत अहम बात आपने कही कि कार्यकर्ताओं का जो दिल नहीं मिलेगा और असमंजस में रहेगा।
तो नितिन ये देखा जा रहा है कि सपा में जो अंदरूनी कला है अभी तो थमती नजर आ रही है, लेकिन कल देखना होगा जब राष्ट्रीय प्रतिनिधि सम्मेलन की बैठक होती है तो क्या निकल कर आता है। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन श्रीवास्तव, समीर आत्मज मिश्र और वरिष्ठ पत्रकार योगेश मिश्रा आपका। और अब लौटते हैं दिल्ली, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है राष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं और उन्होंने नोटबंदी का जो है मामला उठाया है, नोटबंदी को लेकर जो है उन्होंने सब लोगों की जो भी तारीफ की है कि भी लोगों ने उनका साथ दिया उसको सैल्यूट किया, उन्होंने ईमानदारी की बात कही और एक शुद्धि यज्ञ बताया है। और मेरे साथ उनके संबोधन का आकलन करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार शिवकांत मौजूद हैं। शिवकांत जी क्या कहेंगे कि एक तरह से मलहम लगाने की कोशिश है कि जो लोगों को जो परेशानियां हुई थी अब वो बोल रहे हैं कि आपने साथ दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री लोगों से सीधे सीधे बात करना चाहते हैं और ये मान रहे हैं, उनका विश्वास ऐसा लगता है कि अब संसदीय प्रणाली में, संसद में न रह करके सीधा लोगों के साथ संपर्क, लोगों के साथ सीधा संवाद करने में हो गया है। एक तरह से ऐसा लग रहा है कि वो ये मान रहे हैं कि बाकी जो बुद्धिजीवी हैं, जैसे बुद्धिजीवियों की उन्होंने बात की तो ये कहा कि वक्त आएगा जब बुद्धिजीवी इस बात को स्वीकार करेंगे कि देश के भीतर घर करने वाली बीमारी और कुरीति के खिलाफ भी लोग उसी तरह से एकजुट होकर के लड़ाई में कूद सकते हैं जैसे जब दूसरे देशों के साथ लड़ाई होती है, जब बाहरी विपत्तियां आती हैं तो लोग एकजुट हो जाते हैं। उन्होंने उदाहरण दिया 1962 की लड़ाई का, 65 की लड़ाई का, 71 की लड़ाई का। तो ऐसा लग रहा है कि वो लोगों को अपने साथ मान रहे हैं, इस पूरी की पूरी नोटबंदी को एक तरह से लड़ाई मान के चल रहे हैं, ऐसा उन्होंने प्रतीक पैदा किया है। और उस लड़ाई में वो मान रहे हैं कि लोग उनके साथ हैं, लोगों ने उनका साथ दिया, इसलिए वो लोगों में एक तरह से फूंक भर रहे हैं, लोगों को तैयार कर रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया, कुछ लोगों ने जो है वो गड़बड़ की है, उन्होंने अधिकारियों की बात कही, बैंक अधिकारियों की तारीफ भी की, लेकिन ये कहा कि कुछ लोगों ने बहुत शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया कि गंभीर अपराध किए हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा।
जी, जैसा कि उन्होंने कहा कि काले धन ने जो है अर्थव्यवस्था पर भी असर डाला है, RBI भी जो है अब तक जो भी नोटबंदी के बाद जमा हुई है राशि, सीज हुई है, जब्त हुई राशि, उसके बारे में भी जिक्र किया है, लेकिन क्या अपने मकसद पर में कामयाब हो पाई है सरकार?
अगर इनकी बात अब तक जितनी भी मैंने सुनी है उसमें कोई आंकड़े तो इन्होंने दिए नहीं हैं। लब्बोलबाब उसका ये है कि काला धन ये मान रहे हैं कि जो बैंक में सारा का सारा पैसा आ गया है। अब यहाँ दो बातें हैं, अगर काला धन था और सारा का सारा जो भी पैसा इन्होंने जो भी नोट 1000 और 500 के नोटों में जो भी पैसा था उनके बैन करने के बाद अगर वो सारा का सारा पैसा दोबारा बैंक में आ गया है तो वो काला पैसा उसमें कौन सा काला है कौन सा सफ़ेद है ये कैसे फैसला करेंगे? तो इनका कहना ये है कि सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि ये पैसा बहुत सा पैसा इसमें से वो एक तरह से डायरेक्ट अर्थव्यवस्था में, सीधी अर्थव्यवस्था में नहीं था, पैरेलल जो काली इकोनॉमी है जो बिना हिसाब किताब के चलती है जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है उसमें था। ज़्यादातर 500 और 1000 के नोट इस्तेमाल होते थे, एक तरह की समांतर अर्थव्यवस्था है उसके अंदर, इनका मतलब है कि जो कैश अर्थव्यवस्था है, तो वो अब एक तरह से बैंकों के ज़रिए मुख्य धारा में आ गया है, तो वो सबसे बड़ी उपलब्धि है। उससे क्या होगा कि उससे जो है वो गुणात्मक वृद्धि होगी, बैंकों के एक तरह से जो खाते हैं वो बढ़ जाएंगे, बैंकों के पास ज़्यादा पैसा आएगा। और ये कह रहे हैं बैंकों से कि आप देहातों में, गरीबों में इस पैसे का इस्तेमाल आप इस तरह से करें कि अर्थव्यवस्था आगे बढ़े और जो कमज़ोर वर्ग है, जो देहात में किसान हैं, उनकी जो परेशानियाँ हैं वो कम हों और विकास की गाड़ी आगे बढ़े, तो कुछ इस तरह का वो इशारा कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के लब्बोलबाब ये है कि जो पैसा अब बैंकों में आ गया है वो पैसा एक तरह से दर्ज हो गया है, दर्ज होने के बाद अब उसमें से कौन सा पैसा उसके स्रोत सही हैं, कौन से पैसे के स्रोत गलत हैं, ये फैसला आयकर विभाग के अधिकारी करेंगे। और अब तक मैं जैसा सुन रहा हूँ आयकर विभाग के अधिकारियों ने इस तरह के संकेत दिए हैं कि 4 लाख करोड़ से ऊपर पैसा ऐसा है जिसके स्रोतों के बारे में उन्हें शक है, तो वो पैसा एक तरह से काला पैसा है, तो उस पैसे के स्रोत का हिसाब मांगा जाएगा और अगर नहीं मिलेगा तो वो काला ये सफ़ेद करेंगे, इससे सरकार को जो है वो कर के रूप में आय मिलेगी और वो पैसा मुख्य धारा में आ जाएगा, तो वो एक तरह से उपलब्धि है।
और एक जो जोर रहा है प्रधानमंत्री का वो रहा है कि डिजिटल होने पर, जैसे कि उन्होंने एक ऐप भी का लॉन्च किया, भीम ऐप, लेकिन जैसे कि आपने विकास की बात की कि गरीबों का वो चाहते हैं कि विकास हो, गरीबों को जोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन इस डिजिटल अभियान से जोड़ना कितना मुमकिन नज़र आ रहा है आपको? भारत 4G हो चुका है लेकिन उन गरीब तबकों का क्या, वो उस गाँव देहात का क्या, बहुत संक्षेप में क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है।
क्योंकि एक तो बुनियादी ढांचा उसके लिए नहीं है, जहाँ बिजली ही नहीं आ रही है वहाँ आप तकनीक से जोड़ेंगे कैसे, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री बहुत आशावादी हैं ऐसा लगता है। और उनका कहना ये है कि जो टेक्नोलॉजी है इसकी ताकत का इस्तेमाल इस काले धन को और भ्रष्टाचार को दूर करने में किया जा सकता है और इसका इस्तेमाल वो कर रहे हैं और इसमें लोगों की मदद मिल रही है, लोगों का साथ मिल रहा है, इससे वो बहुत खुश हैं।
जी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी भी राष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि सुबह नमस्कार भारत में आपको विस्तृत से उसकी पूरी जानकारी दे। वरिष्ठ पत्रकार शिवकांत शर्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब कार्यक्रम का अंत करने से पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
BBC समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए साल की पूर्व संध्या पर देश के नाम संदेश में कहा है कि ईमानदारों की मुश्किल कम करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि बड़े नोट, महंगाई और काला धन बढ़ा रहे थे। मोदी ने कहा कि बेईमानों के खिलाफ कानून अपना काम करेगा। मोदी ने कहा कि सरकार अब बैंकिंग व्यवस्था को सामान्य करने पर ध्यान देगी, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, जिससे लोगों की समस्या कम हो। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुना रहे थे वत्सल्य राय। इसी के साथ दिन भर में बस इतना ही। तकनीकी सहयोगी तिलक भाटिया के साथ मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।